नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2024 प्रदान किए। कहा, खनिजों ने मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तीन बड़ी योजनाओं की शुरुआत की। श्री गुप्ता ने मुबारकपुर डबास में ग्रिड सबस्टेशन, नरेला में अग्निशमन केंद्र और इठाला में 25 किलोवाट सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने नांगल वार्ड में वरिष्ठ नागरिकों और जरूरतमंद लोगों को व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र और सहायक उपकरण वितरित किए। दिल्ली पुलिस ने तीन अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को गिरफ्तार किया और भारतीय निशानेबाज जोनाथन गेविन एंटनी ने नई दिल्ली में जूनियर निशानेबाजी विश्व कप के दूसरे दिन आज पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2024 प्रदान किए। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार भूविज्ञान के क्षेत्र में देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है। पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि ये पुरस्कार भूविज्ञान के क्षेत्र में उनकी प्रतिबद्धता, नवाचार और उत्कृष्टता को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि खनिजों ने मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उद्योगों की आधारशिला रखी है। उन्होंने कहा कि कोयले और लोहे के बिना औद्योगिकरण की कल्पना नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि भूवैज्ञानिकों की भूमिका केवल खनन तक ही सीमित नहीं है और भू पर्यावरणीय स्थिरता पर खनन के प्रभाव पर भी उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता है।
जियो साइंटिस्ट की भूमिका केवल खनन तक सीमित नहीं होना चाहिए। खनन के जियो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी आपको उचित ध्यान देना होगा। ऐसे टेक्नोलॉजी विकसित करने और उपयोग में लाने की आवश्यकता है जिससे खनिज उत्पादों में वैल्यू एडिशन हो एवं वेस्टेज कम से कम हो। ये सस्टेनेबल मिनरल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है।
उन्होंने खनिज उत्पादों के मूल्यवर्धन और अपव्यय को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी विकास और उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने बताया कि खान मंत्रालय स्थिरता और नवाचार के लिए प्रतिबद्ध है और खनन उद्योग में AI, मशीन लर्निंग और ड्रोन आधारित सर्वेक्षणों को बढ़ावा दे रहा है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज का युग है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स आधुनिक टेक्निक की रीढ़ है। वर्तमान जियोपॉलिटिकल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ये अत्यंत आवश्यक है कि भारत इनके उत्पादन में आत्मनिर्भर बने। ये विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज तीन बड़ी योजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने आज मुबारकपुर डबास में ग्रिड सबस्टेशन, नरेला में अग्निशमन केंद्र और इठाला में 25 किलोवाट सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ऊर्जा उत्पादन और स्वच्छता में बड़ा परिवर्तन ला रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने 1000 सरकारी इमारतों पर सोलर पैनल लगाने का कार्य शुरू किया है जिसे समय पर पूरा कर लिया जाएगा। इस योजना से 55 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली को कूड़ा रहित बनाने के लिए नए वेस्ट टू एनर्जी और ई वेस्ट प्लांट शुरू किए हैं। नरेला में नया अग्निशमन केंद्र लगभग 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में स्थापित है। आधुनिक स्टेशन में अग्निशमन वाहनों के लिए शेड, रखरखाव कक्ष, अग्नि नियंत्रण उपकरणों और सामग्रियों के लिए स्टोर रूम शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार हर क्षेत्र में पारदर्शिता, जन सहभागिता और दक्षता के साथ काम कर रही है ताकि दिल्ली को विकसित दिल्ली की दिशा में अग्रसर किया जा सके। दिल्ली के सामाजिक कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने आज नांगल वार्ड में वरिष्ठ नागरिकों और जरूरतमंद लोगों को व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र और अन्य सहायक उपकरण वितरित किए। उन्होंने कहा कि ये कार्य सेवा पखवाड़े के अंतर्गत किया गया है और इसमें 8.5 लाख रुपए के उपकरण वितरित किए गए हैं।
उस सेवा पखवाड़े के अंदर जितने भी लोगों को सेवाओं के रूप में कोई भी कार्य करना या सेवाएं देनी, ऐसे सभी कार्य करते हैं। उसी के तहत आज हमने नांगल वार्ड के नांगल गांव में आज तो लगभग हमने 8.5 लाख रुपए की राशि के ऐसे उपकरण हमने लोगों को दिए हैं।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज यशोभूमि में आयोजित दूसरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बायो एनर्जी और टेक्नोलॉजी में शामिल हुई। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस सम्मेलन में बायो एनर्जी, एथेनॉल, कंप्रेस्ड बायोगैस, बायो मोबिलिटी और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जैसे विषयों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि ये केवल तकनीक नहीं बल्कि देश के भविष्य की दिशा है।
दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है, दिल्ली को जरूरत है, देश को जरूरत है और मुझे लगता है कि वर्षों की ये जरूरत जो है जिसे दिल्ली में अभी तक लेके आया जाना चाहिए। आजादी के इतने सालों बाद देश की राजधानी में पहला बायोगैस प्लांट लगना आज तक नहीं था। हमने उसे अभी नंगली में जब शुरू किया, आज भी हम एक नया बायोगैस प्लांट शुरू करने जा रहे हैं। लाखों मवेशी दिल्ली में है और इतना गोबरधन जो यहाँ पे जनरेट होता है वो सीधा सीधा अभी तक यमुना जी में जा रहा था जिससे यमुना जी गंदी हो रही थी। ऐसे ही वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जब तक नए डेवलप नहीं होंगे तब तक यहाँ का कूड़ा खत्म नहीं होगा।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में भाग लिया। समारोह में श्रीमती गुप्ता ने प्रतिभाशाली युवाओं को सम्मानित किया और उनसे संवाद भी किया।
अपने संबोधन में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय का जो मंत्र दिया था उसी भाव को ये संस्थान जीवंत करता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने विश्वविद्यालय के कॉलेजों में वेतन और आधारभूत संरचना से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जिससे शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति ही विकसित भारत 2047 के निर्माता हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से स्वदेशी अपनाने, हिंदी का प्रचार प्रसार करने और नवाचार की अग्रसर होने को कहा। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली विधानसभा ने आज केंद्रीय विधानसभा के पहले निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष विट्ठल भाई झावेर भाई पटेल की 192वीं जयंती और शहीद भगत सिंह की 118वीं जयंती के अवसर पर एक पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट ने दोनों स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
श्री बिष्ट ने कहा कि विट्ठल भाई पटेल की ईमानदारी और निर्भीकता के साथ संसदीय परंपराओं की नींव रखी, वहीं शहीद भगत सिंह ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके जीवन से हमें लोकतंत्र की रक्षा करने और जनता की सेवा में समर्पित रहने की प्रेरणा मिलती है। श्री बिष्ट ने कहा कि इस अवसर पर साकेत स्थित रेड रोजेस पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने विधानसभा परिसर में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रदर्शनी सेवा ही संकल्प राष्ट्र प्रथम ही प्रेरणा का अवलोकन किया। विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री के बचपन और प्रारंभिक जीवन पर आधारित लहू फिल्म चलो जीते हैं भी देखी। इस यात्रा ने विद्यार्थियों को विकसित भारत के दृष्टिकोण से अवगत कराया, उन्हें विधानसभा भवन का भ्रमण करने का अवसर भी प्रदान किया। दृष्टि की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
राजधानी के विकासपुरी विधानसभा के लोगों ने आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह से कैंप कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान लोगों ने श्री सिंह से अपनी समस्याएं बताई और विभिन्न मुद्दों पर अपने सुझाव दिए। लोगों से बातचीत के बाद उन्होंने समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। दिल्ली के जल और लोक निर्माण विभाग मंत्री परवेश साहिब सिंह ने आज एक बैठक में 30 सितंबर को होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ओखला में एशिया के सबसे बड़े ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न होगा। इसी बैठक में भाजपा सांसद रामवीर सिंह भिधोड़ी ने कहा कि इस ट्रीटमेंट प्लांट से पूरी दिल्ली के साथ साथ दक्षिण दिल्ली को बहुत लाभ मिलेगा और सीवरेज समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को धन्यवाद दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के दक्षिण पश्चिम जिले के ऑपरेशन सेल टीम ने आज 3 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को गिरफ्तार किया। सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद दिल्ली के विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय की सहायता से उनको बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई। इंस्पेक्टर गजेंद्र सिंह के नेतृत्व में और सहायक पुलिस आयुक्त विजयपाल सिंह तोमर के पर्यवेक्षण में एक टीम बनाई गई। टीम ने बताया कि अवैध प्रवासी यूरोप के देशों में जाना चाहते थे, लेकिन उचित वीजा नहीं मिलने के कारण दक्षिण दिल्ली में रहने लगे थे। पुलिस की टीम ने अवैध प्रवासियों के मोबाइल फोन और सोशल मीडिया अकाउंट की जांच करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। भारतीय निशानेबाज जोनाथन गेविन एंटनी ने नई दिल्ली में जूनियर निशानेबाज विश्व कप के दूसरे दिन आज पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का खिताब जीत लिया। इसी स्पर्धा के महिला वर्ग में भारत की रश्मिका सहगल ने रजत पदक अपने नाम किया। स्कीट्स पर प्रतियोगिता भी आज क्वालिफिकेशन राउंड के साथ शुरू हुई, जहां एशियाई चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता हरमेहर सिंह लाली ने 75 में से 74 निशानों के साथ पुरुष वर्ग में शीर्ष स्थान हासिल किया। जूनियर महिला स्कीट में मौजूदा एशियाई चैंपियन मानसी रघुवंशी ने भी शीर्ष स्थान हासिल किया। दिल्ली के महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने आज दिल्ली नगर निगम में एक बैठक आयोजित की। बैठक में विभिन्न वार्डों से संबंधित मुद्दों, नागरिक सुविधाओं तथा स्वच्छता और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। महापौर ने कहा कि बैठक में विशेष रूप से मच्छर जनित बीमारियों तथा जल जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए विचार विमर्श किया गया। श्री सिंह ने कहा कि निगम ने पहले से ही दवाओं के भंडारण, छिड़काव और फॉगिंग जैसे कार्यों को तेज कर दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों द्वारा सुनियों योजना को मिल रही सराहना और सकारात्मक प्रतिक्रिया को देखते हुए दिल्ली नगर निगम ने इस योजना को 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने नई दिल्ली में संयुक्त रूप से राष्ट्रीय जल सुरक्षा अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि अब मनरेगा के अंतर्गत जल संरक्षण कार्यों पर धनराशि का एक निश्चित अनिवार्य रूप से खर्चा किया जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने बताया कि नई दिल्ली में आयोजित विश्व खाद्य भारत शिखर सम्मेलन के दौरान 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे देश भर में 9,00,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पत्रकारों से बातचीत में श्री पासवान ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं और ये शिखर सम्मेलन प्रसंस्करण क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान कर रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने एक सूचना जारी कर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT को प्रवेश और सरकारी नौकरियों के लिए स्कूल शिक्षा बोर्डों में कक्षा 10वीं और 12वीं के प्रमाण पत्रों को समक्षता प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी है। मंत्रालय ने बताया कि ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों के प्रवेश और रोजगार के उद्देश्य से निभाई जाएंगी। NCERT राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा तथा ज्ञान विश्लेषण के माध्यम से इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। निर्वाचन आयोग ने पोस्टल बैलेट की गणना संबंधित नियमों को संशोधित किया है। ईवीएम और वीवीपैट की गणना के अंतिम राउंड से पहले सभी डाक मतपत्रों की गणना अनिवार्य बना दी गई है। आयोग के बयान में कहा है कि चुनाव सुधारों से संबंधित तीसरी पहल का उद्देश्य मतगणना में तेजी, पारदर्शिता और एकरूपता के लिए डाक मतपत्रों की गिनती को मुख्यधारा से जोड़ना है। राजधानी में आज मौसम सामान्य रहा। आज का अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस रहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2024 प्रदान किए। कहा, खनिजों ने मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 3 बड़ी योजनाओं की शुरुआत की। श्रीमती गुप्ता ने मुबारकपुर डबास में ग्रिड सबस्टेशन, नरेला में अग्निशमन केंद्र और इठाला में 25 किलोवाट सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने नांगल वार्ड में वरिष्ठ नागरिकों और जरूरतमंद लोगों को व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र और सहायक उपकरण वितरित किए। और भारतीय निशानेबाज जोनाथन गेविन एंटनी ने नई दिल्ली में जूनियर निशानेबाजी विश्व कप के दूसरे दिन आज पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का खिताब जीत लिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।